Good morning. My name is Bhanu Prasad, and I have been a student of the Brahma Kumaris for close to 20 years now. And I work at the TCS Foundation, where we are addressing social challenges that are of national importance. Today, I have the immense pleasure of inviting two dignitaries, the first one of whom is considered a doyen in the industry of technology. And I have the pleasure of introducing Mr. Som Mittal, the former chairman of chairman and president of NASSCOM, who is with us today, and he is going to share a keynote speech. Mr. Som Mittal has been working with the governments worldwide to formulate trade, taxation and immigration policies that balance business, national and social interests. He is a speaker at management institutes and international events on information technology, trends, cyber security and global business. He has over 3 decades of experience in the technology industry and being an enabler and governance specialist with the Indian IT industry especially. It is just right for us to have an eminent person like that amidst us in an IT gathering also talking about spirituality. Mr. Som Mittal.
Good morning, everybody. Thank you for the introduction, and good to see everybody here. It was also good to see that we started the conference here this morning with this cartoon here, so there was lightness in it and there was a message as well. You just spoke about my speaking on spirituality. Actually, I'm not sure whether I can speak after several days. Yesterday we were here, and having heard everybody, I think I'm going to bring you a little bit down to the ground from the elevated place that you are in. But thank you for inviting me. How many of you in this room are actually from the IT industry? Wow, that's majority. How many of you cannot understand Hindi? Wow, so everybody understands Hindi. And English, I presume everybody does. So, actually I'm quite humbled by having been invited here to speak, and you already heard many of the people here who are much more learned. You're on a spiritual high. I hope I can keep you there, though I'm not going to speak on spirituality as much. And when Monica invited me to come here, she said you should speak on being a wise leader. And I said the only word wise that she uses is because of my white hair or no hair. But then I reflected on, I've been really fortunate that I worked over these 40, 45 years, and of course during school and college with some very amazing people, and also had an opportunity to work with some amazing companies, having had very many anxious moments, a lot of disappointments, failures, and of course joys as well. And I was reflecting back as I was making my notes. If I look back at that life and somebody asked me, what would you want to change? Actually, I couldn't think of anything, right? So I think the way the life is and the way it came, I'm really blessed that it happened. I came from a family where integrity, values, education, that was very high. I guess that's true for most of us in this room, where these are values that come in. And besides this, there wasn't very much left in terms of money, etc., to spend on. So it was that what the family gave. But interestingly, when I meet a lot of young people, they always talk about how they're going to take their career. And I would only say that life isn't about planning. It comes as it is. And I would think that in my life as well, I moved jobs, I moved places, and nothing of it happened because I planned it that way. It just happened and I went with the flow. So for me, I started with the engineering industry after having done my BTech and MBA, and then I worked in the auto industry, worked too in IT, hardware industry, then software, and then various roles that I took. Initial years were spent with learning from the Japanese, and the last part of my career was really working with the US. So I was really fortunate that I really got a real blend of things. When Monica and I were discussing, she said, IT industry has grown, why don't you speak? I said, no, I think IT industry, a lot has been written about what the IT industry did, and I was really fortunate to be a part of it. So what I would really share with you is not about what happened to the IT industry, but really some things that we did, some things that others did, which I hope can be of some use to all of you here. But I must say that when I joined the industry in 89, almost nothing existed. We were just reminiscing. The whole industry's turnover was less than 1,000 crores. And we were all very small in a way. There was no email. We did not have PCs. There were no iPhones and so on. And India was not known for quality. In fact, if you went around and asked India, they will all talk to you about snake charmers and elephants and camels and Taj Mahal. That's all we were known for. And here were we trying to talk about exporting software. And that was a daunting task. But here are the people who did it, right? They had a conviction that there is a need. And if there is a need, we will make it happen. And I think that strong conviction is what carried this industry. There wasn't any market. It wasn't about saying hum usse sasta kar lenge ya jyada kar lenge. Kisi ne 10,000 mil dur baith ke US ke liye IT ka kaam kiya hi nahi tha. Log products banate the, export karte the, but wo to physical products tha. Yahan to na to aapne us aadmi ko dekha, na product ko dekha, aur aap export kar rahe hain. I think this is something that this industry changed. So the learning really was that opportunities are created by us, and we have to make most of it happen. Aur aaj Hindustan mein jab hum log ye $5 trillion ye sab bol rahe hain, wo ye nahi hai ki koi low hanging fruit hai ki hum usko tod lenge ya le lenge. Wo market hai, banne wala hai, aur hame hi create karna hai. To fir usme yahi laga ki kya hurdles nahi the. Kehna to bahut aasan hai ki yahan software engineers hain, market hai, to yahan pe hamare paas kuch tha hi nahi. Aaj jab hum log download karte hain ek app, wo 40 MB hota hai, aur hamare ghar ke andar 2 Gbps to sabse kam speed mani jati hai. Aur us samay industry ke paas 64K ki speed thi. Koi cable nahi hota tha. अगर आपको कोई कंपनी आइडेंटिफाई करनी है कि सॉफ्टवेयर की है, तो एक बहुत बड़ा टावर होता था, उस पर वो माइक्रोवेव एंटेना होता था. तो उन दिनों से अगर कोई सोचे कि आप इतना सॉफ्टवेयर का काम कैसे कर लेंगे बैठ के, लेकिन वो हर्डल्स थी. एयरपोर्ट हमारे लोग आते थे, वो सोचते थे कि यहाँ काम देंगे, लेकिन बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कई हजार लोग रात के 3 बजे हैं, वो घबरा जाते थे. सड़क पे गाय मिलती थी उनको, जो उनको बोला गया था कि फोटो खींच के भेजना, तो डिसअपॉइंट नहीं होते थे. लेकिन उसके बावजूद ये इंतजार नहीं किया इस इंडस्ट्री ने कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं. और ये मेरा मैसेज था कि हर्डल्स आती हैं. अगर आप ये सोचें कि सब खत्म हो जाएंगे हर्डल्स, सरकार सारे काम कर देगी, उसके बाद हम करेंगे, वो नहीं होगा. और सिक्वेंशली काम करना होगा. तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो आज से 30 साल पहले $50 मिलियन था, आज वो इंडस्ट्री $180 बिलियन है. 180 बिलियन मैं गिन भी रहा हूं कि कितने गुना हो गए, क्योंकि 50 तो छोटा था. 40 लाख लोग, और बहुत सारे आप लोग इसमें हैं जो आज इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, 40 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली. और इसमें सोचने वाली बात है कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं थी. आजकल सब आदमी बात करता है कि स्ट्रैटेजी है कि नहीं. कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी. मौका मिला, काम किया, रोज नया सीखा, और वही हमारी स्ट्रैटेजी है कि रोज का सीखो, रोज अच्छा काम करो, डिलीवर करो, कस्टमर को वैल्यू ऐड करो, और वो इंडस्ट्री बन गई. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं, और एक बार अपने लिए ताली बजाइए कि आप लोगों ने ये इंडस्ट्री बनाई है. और वो टेक्नोलॉजी तो बदलती रही, हर 2 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती थी. और हमारे यहां ये 24-25 साल की उम्र के लोग होते थे. 40 लाख जो हमारे पास आज लोग काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज एज 26.5 साल है. आप सोचिए 26.5 साल. तो एक्सपीरियंस उतना ही है, बट दीज आर द पीपल हु चेंज विद द टाइम, दे कीप इवॉल्विंग देमसेल्व्स. और उन्होंने किसी भी चेंज को एक बाधा नहीं समझी. कोई नहीं सोचा कि कौन हमारे लिए चेंज करेगा. ये सारा इंडस्ट्री में अपने आप नेविगेट किया गया. जो तीसरा मेरे हिसाब से एक लर्निंग मुझे रही है, और मैं समझूंगा कि इंडस्ट्री के लिए भी और हम सबके लिए एक बहुत जबरदस्त एक लर्निंग है, कि एक वर्ड जिसको कि ट्रस्ट बोलते हैं. और आपने सुना, बहुत लोगों ने कल से भी बात करी है ट्रस्ट के बारे में, जिसको हम लोग विश्वास कहते हैं. कह बड़े आसानी से जाते हैं कि भाई ट्रस्ट मत खो और बिल्ड ट्रस्ट. कोई बोलता है कि ब्रांड की ट्रस्ट होती है. तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कन्विक्शन चाहिए कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जहां की मेरा ट्रस्ट बदल जाए। तो जो इंडस्ट्री बनी, किसी ने काम भेजा, वो डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर, तो हम उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते थे कि कल वो जब उन्होंने हमें काम भेजा, हमने रात भर किया, जब वापस कल सुबह जाएगा तो जिस समय बोला है उस समय काम उनको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आती थी, और अगर नहीं कर पाए तो उनको पहले बता देते थे। तो ये जो ट्रस्ट है जिसमें कि हमको रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गलतियां माननी पड़ती हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है हम लोगों को बहाने। अगर आप किसी से पूछिए कि भाई क्या हुआ, फोन मिलाया मिला नहीं, फ्लड्स आ गए, ये वो, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई फ्लड्स आपके यहाँ आए क्या है, हमारा तो काम नहीं हुआ, तो आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं हुआ। और एक ट्रस्ट में ये होता है कि हम लोग कई जो यंग होते हैं कई बार स्मार्ट बन जाते हैं, ओवर स्मार्टनेस होता है, लेकिन उसमें हम एक बार ओवर स्मार्ट हो जाएंगे, दो बार हो जाएंगे, लेकिन जिसने परखना है वो तो परख ही लेता है कि ओवर स्मार्ट है कि वाकई है। तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि चाहे ऊंच नीच हो जाए, बिकॉज यू वर ऑनेस्ट, यू वर ट्रांसपेरेंट, आपने लोगों को बोला कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन एंड में ये फायदा रहा। ये ट्रस्ट किसके लिए है? कस्टमर्स के लिए है क्या? नहीं, यही चीज फैमिली के लिए है, आप सोचिए, दोस्तों के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है, सरकार के लिए है, सोसाइटी के लिए है। सोसाइटी आपको ट्रस्ट करती है कि नहीं? तो आज जो हमें कई दिक्कतें आ रही हैं इस समय और इतनी डिबेट हो रही है, वो इसीलिए भी हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, लोगों के बीच में से ट्रस्ट उठ गया है। ट्रस्ट क्यों उठ गया? एक ILFS फेल हो गई, नीरव मोदी ने कुछ काम किया, बैंक का हो गया, तो अब जो सबको एक ही निगाह से सरकार देखती है कि भाई ये तो हो सकता है ठीक ना हो। तो ये जो मिसट्रस्ट है उसको अगर हम यही बोलते रहेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो, ये हो, वो नहीं होगा, उसमें जो विश्वास है वो दोबारा से बनाना पड़ेगा। और मैं ये बता सकता हूं कि सरकार ने उस समय IT इंडस्ट्री को ट्रस्ट किया और आज ये हो गया कि उन्होंने SEZ बनाए, फाइबर घर घर पे पहुंच रहा है, वो उनकी वजह से हुआ, टैक्स हॉलीडे दिए गए, हजारों कॉलेज खुल गए जो कि पहले नहीं थे। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सारा सप्लाई था, उस समय एक टाइम था जब हमको एरो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सबको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना लेते थे, लेकिन अब ये कैपेसिटी बन गई। ये सब हुआ क्योंकि ये विश्वास रहा। तो आप कुछ हो जाए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए, ये एक बात जो है कर लीजिए। हमेशा पूछिए कि मैंने ये कर रहा हूं, इससे किसी का विश्वास तो नहीं टूट रहा। और मैं यही कह सकता हूं कि इस समय इसकी और जरूरत है किसी और से पहले। चौथी चीज, ये तो शिवानी बहन ने बहुत बार बोला, जितने भी स्पीकर्स आए हैं उन्होंने बोला, लेकिन मैं फिर से बोल सकता हूं, ये हमारी एक इंडस्ट्री की लर्निंग थी। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ लोग हैं। हम लोगों के पास कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लोग हैं। और यही चीज अगर आप पूछें, हर चीज में मशीन बन सकती है, ला सकते हैं, बिल्डिंग बन सकती है, ला सकते हैं, लेकिन लोग ही हैं जो कि फर्क करते हैं। और आप ये देखिए कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ भी है, उसके लिए हम AMC लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे 40 लाख लोग रोज रात को घर जाते हैं, सुबह आते हैं काम पे, और घर पे कभी कुछ दुविधा हुई, कुछ हुई, और जैसा कि बताया गया है, कल भी हम सुन रहे थे कि हर आदमी 5 संस्कार लेके आता है, तो वो भी 5 संस्कार, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ही उनको एक कैटेगरी में ट्रीट करते हैं, ये इंजीनियर है, ये सीनियर इंजीनियर है, ये मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये डेवलपर है, या जो भी कैटेगरी है, और हम उनको एक ही निगाह से, एक ही तरह से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैं तो सब अलग। तो हम किस तरह से करें कि हर आदमी, हर पर्सन, चाहे वो कोई भी किस तरह का व्यक्ति है, वो आता है सुबह कि अच्छा काम करे, उसके कुछ मंजूबे होते हैं, लेकिन उसकी भी अंदर साइकोलॉजिकली कुछ चल रही है, तो क्या आप सेंसिटिव हो सकते हैं कि उनके स्ट्रेंथ देखें कि आप उसको कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जो एम्पैथी है, और उसकी बात काफी बार हुई है, वो क्या रहेगी? मुझे एक ध्यान है कि मैं ऐसे ही रोज सुबह जाता था अपने कैंपस में घूमने के लिए, तो मिलता था लोगों से, मुस्कुरा के बात करते, सुबह काम यही था कि 1 घंटा चक्कर काटो और देखो। तो एक मुझे अपना कुलीग था, वो मिला तो थोड़ा मायूस सा दिख रहा था, तो मैंने उसको बोला कि क्यों ठीक हो तुम? मुझे कहा नहीं, मैं ठीक हूं, कुछ ऐसे ही होगा। तो मैं घूम के वापस आया तो 1.5 घंटे के बाद, तो एक ईमेल थी मेरे पास, उसमें लिखा था कि सोम, यू क्रॉस बाय, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, एक्चुअली आई एम हैविंग सीरियस प्रॉब्लम्स एट माय होम, बट थैंक यू फॉर आस्किंग, राइट? तो मुझे लगा कि मैंने तो ऐसे ही उसका था, लेकिन उस से उस पर क्या फर्क पड़ा, उसको कितना इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर। तो आप देखिए कि रोज आपके साथ होता है, आप भी गुस्से में होते हैं, और यही कल बात हो रही थी कि जो कैसे हम अपने आप को करें, लेकिन जो लोग हैं उनका कैसे करें। अब ये बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि कभी भी कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी को नहीं छोड़ता है, वो छोड़ता है तो मैनेजर्स को छोड़ता है, क्योंकि उनको मैनेजर्स से ही मिलता है। तो हम लोग जो इस रूम में बैठे हैं सबके मैनेजर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं। अगर आप कोई कंपनी छोड़ेंगे तो आप इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि आपको मैनेजर से वो एम्पैथी नहीं मिल रही है, और अब मैं आपके लोग भी इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको आपसे एम्पैथी नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि आप उस एम्पैथी को बनाए रखें और वो लें। इसमें जब होता है, हमारे यहाँ बड़े प्रोसेस बने हुए हैं, सब जगह हम लोग कहते हैं, बोलते हैं कि भाई किसी को काम नहीं हो रहा है, किसी उसको फीडबैक दो। हम भी लोगों से पूछते हैं कि हमको फीडबैक दो। फीडबैक का मेरे हिसाब से एक ही मतलब है कि मेरी बड़ाई करो, और हमारे हिसाब से फीडबैक का मतलब है ये बोलो कि आप तो ये काम ठीक नहीं कर रहे हो। तो वो तो उसने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो सुन रहा था कि मैं तो है, तो वो डिफेंस में चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूं, ये फीडबैक। तो ये जो फीडबैक है वो जरूरी होता है, लेकिन उस दिन जरूरी नहीं होता जिस दिन कि आप एक बार साल में बैठ के उससे बात कर रहे हैं। फीडबैक वहां है काम जहां उसने उसमें कोई कमजोरी थी या वो काम नहीं कर पा रहा था, तो आपने उसके साथ हाथ बटाया, उसके साथ काम किया और उसको मदद दी कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे करो। फीडबैक देना कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों का भी विश्वास कई बार टूट जाता है लोगों में, कि कुछ लोग होते हैं 1-2% जो कि टाइम का फायदा उठाते हैं, या मैं अगर कुछ बोलूं कि काम चोर होते हैं, या बहुत कम होते हैं, तो उनके वजह से हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि कैसे डील करेंगे लोगों के साथ। लेकिन अगर हम उनको हेल्प करें, क्रिटिसिज्म नहीं, तो बहुत इफेक्टिव वो रहेगा, रहा था कि हम उनको एक साल में फीडबैक दें। कि हम लोगों का ब्लेस्ड है, क्योंकि मेरे अभी मैं रिटायर हो गया हूं, तो अभी पुराने दोस्तों से इनसे मिलता रहता हूं। तो हमारे जो लोग थे 30 साल पहले जो काम करते थे, 35 साल पहले करते थे, मैं अभी जापान गया था, तो जो मेरे साथ जापानी 30 साल पहले काम करते थे रिटायर हो गए थे, मैं 30 साल के बाद मिल रहा था उनसे, वो 6-7 लोग मिलने आए, और इसी तरह से और भी कंपनियों के जो लोग मिले हैं, वो हम लोग आपस में एक ही बात करते हैं कि यार वो समय जो था हम लोगों ने बहुत मिलकर सीखा। तो जो ये वर्ड लर्निंग है वो एक जो बॉन्ड बनाते थे। लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि हम नहीं ठीक कर रहे थे तो किसी ने हमें सिखाया, कोई ठीक नहीं कर रहा था तो हमने उनको सिखाया, उसको आप फीडबैक बोल दीजिए, क्रिटिसिज्म बोल दीजिए, लेकिन ये जो तरीका था कि उसका हाथ पकड़ के सिखाया, उससे कितना फर्क पड़ा। तो ये बात कर रही है कि अपने लिए कोई मेंटर और कोच ढूंढ लीजिए, और अपने लिए रोज पूछिए कि मैं किसी का मेंटर और कोच हूं कि नहीं। आप भी किसी के मेंटर और कोच हैं, और आपके लिए भी कोई एक मेंटर और कोच चाहिए, ना कि बॉस, ना कि फीडबैक वाला। तो ये मुझे एक बहुत अहम लगा कि ये जो पीपल मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ सब IQ की बात होती है, टेस्ट होते हैं, वो IQ टेस्ट करता है, सब कुछ IQ का रहता है, लेकिन 3/4 काम IQ का नहीं होता, वो EQ का ही है, इमोशनल क्वोशंट का है, कि हम कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे से कैसे करते हैं, वही आदमी परफॉर्मर हो जाता है, वही परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मर हो जाता है। तो ये एक, और यहां तो बहुत बता ही रहे हैं इसके बारे में, तो प्लीज एब्जॉर्ब किए, एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको कि आप ले सकते हैं। कुछ और चीजें थी मैं शेयर करना चाहूंगा, समय है ना मेरे पास। एक है कि हम लोगों को जहां कि ये जो मुझे बताया गया कि वाइज लीडर पे बोलिए, तो ये लीडर क्या है, लीडर को अलग है, बड़ा डिबेट, बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बहुत आर्टिकल्स हैं, डिबेट होती है मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे कि आर लीडर्स बॉर्न, कैन लीडर्स बी मेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। ये सारे सवाल मेरे हिसाब से ठीक भी हैं, ना नहीं भी हैं, क्योंकि किसी भी समय, जैसे कि यहाँ पे कई स्पीकर बोल चुके हैं, कल भी बोल रहे थे, कि आपके रोल होते हैं, कहीं पे मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अकेला हूं, कहीं पे मैं मैनेजर हूं, और कहीं पे मैं लीडर हूं। ये रोल कब लीडर बन जाता है, कब मैनेजर, कब इंडिविजुअल, ये तो हर आधे मिनट में चेंज हो रहा है। तो लीडर तो हम सभी हैं, और लीडरशिप दी नहीं जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी नहीं जाती हैं, ये अर्न करी जाती हैं। अगर आप हमारे यहां बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा देखो 3 साल हो गए प्रमोशन नहीं हुआ और उसकी वजह से बहुत टेंशन रहती है, वातावरण में भी बहुत दिक्कत. हाउ मेनी ऑफ यू आर वरीड अबाउट योर प्रमोशंस? नोबडी. गुड, थैंक यू बीइंग ऑनेस्ट. राइट, हम लोग हर साल यही कहते हैं मेरा बोनस क्या होगा, मेरा क्या होगा. सो ये एक नेचुरल चीज है क्योंकि हर आदमी प्रगति चाहता है, बाहर से रिकग्निशन चाहता है, बट वी हैव टू अर्न दैट. एंड ऑल माई लाइफ आई फाउंड दैट इफ यू वर टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वर नॉट गिवन टू यू व्हेन यू स्टेप्ड अप, आपने वो किया जो आपसे मांगा नहीं गया था, राइट, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप ही बन जाती हैं और लोग रिकग्निशन करते हैं और आप अपने आप बढ़ जाएंगे. लेकिन ये बोलना कि हम एम्पावर्ड नहीं है, जिस दिन आपने बोल दिया मैं एम्पावर्ड नहीं हूं, आपने डिसएम्पावर कर दिया अपने आप को. क्योंकि लोग तो वेट कर रहे हैं कि भाई और कोई काम ले ले. आमतौर पर तो लोग यही बोलते हैं कि दिस इज नॉट माई रोल. बट रोल का क्या मतलब है? आपको किसी कंपनी में आज का आपको रोल बता दिया गया था ये है, लेकिन आपने अगर बाउंड्रीज बना ली तो कैसे रोल हो पाएगा? तो ये एक बहुत अहम बात है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीडरशिप ये एक्वायर करिए, ये आपको कोई देगा नहीं. और इसमें एक चीज और है, लीडर्स हम भी थे, ग्रोथ चल रही है 25-30%, और जब हम लोग लीडरशिप अपनी दिखाते थे तो लोग बोलते थे कि आप देखिए सर हम पे छोड़ दीजिए, माइक्रो मैनेज मत करिए हम. अच्छा ठीक है, आप माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे आपको. लेकिन वही लोग थे जिस दिन हम लोगों को दिक्कत आई और परेशानी हुई, या तो मर्जर हो गया, या तो 2008 में हमारा डाउन साइड हुआ, 2001 में .com बस्ट हुई, तो वही लोग जो आपको माइक्रो मैनेज बोले थे उनको आपकी जरूरत पड़ी. तो लीडर्स की जरूरत तभी पड़ती है जबकि क्राइसिस होती है, अच्छे टाइम्स पे किसी को आपकी जरूरत नहीं है. तो लीडरशिप ओनली शोज अप व्हेन देयर इज अ क्राइसिस एंड यू हैव टू लिव अप टू दैट. और उसके अंदर भी यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल, वॉक द टॉक. और उसमें ये जो लीडरशिप है ये टाइटल नहीं है, ये कोई रोल नहीं है, दिस इज अ बिहेवियर. आप बिहेव करते हैं, आर यू बिहेविंग लाइक अ लीडर और आर यू बिहेविंग नॉट लाइक अ लीडर? जहां आपने छोड़ के निकल गए, राइट, तो वो लीडरशिप नहीं हुई उसके लिए. मैं तो एक व्यक्ति हैं, आपने नाम उनका सुना है, बहुत प्रभावित हूं उनसे, मिस्टर प्रेम जी, आसिम प्रेम जी, विप्रो के चेयरमैन हैं. मैं 88 में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था विप्रो के लिए, बहुत सारे लोगों से मिला करा, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं क्यों आ रहा हूं बैंक दिल्ली छोड़ के बैंगलोर और नहीं लूंगा नौकरी. तो उन्होंने बोला कि, इनको बोला नहीं था मैंने सोच लिया था मन में. फिर अगले दिन हमको भेजा गया कि जाइए हमारे चेयरमैन से मिल लीजिए. हमारे चेयरमैन, हम पहले भी मिल चुके थे क्या ऐसे चेयरमैन से, आधा घंटा मिलते थे, चाय वाय पीते थे, निकल जाते थे. प्रेम जी सर ने मुझे करीब 6.5 घंटे इंटरव्यू किया अकेले, और वो सवाल पूछते रहे और हर 2 घंटे में बोलते थे कि आई डोंट हैव अ फिट ऑन यू. और जब उनके इंटरव्यू खत्म हुई, फ्लाइट का टाइम हो गया था, उन दिनों बोर्डिंग कार्ड वगैरह होते नहीं थे, मैंने फ्लाइट मिस हो गई तो आप 2-3 दिन वहीं बैठे रहो, तो हम भागे वहां से, तो मुझको ऑफर दिया गया. मैंने कहा सोचा कि ये सात जो आदमी 6-6, 7-7 घंटे एक आदमी को लेने के लिए करता है वहां होगा. तो आई ज्वाइंट विप्रो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड टू मी. और जब मैं गया वहां पे तो मैंने देखा कि एनवायरमेंट बहुत फर्क था. तो जब 15-20 दिन हो गए थे विप्रो ज्वाइन करे, तो उन्होंने आए वो बॉम्बे से बैंगलोर, तो उन्होंने बोला कि जितने नए लोग आए हैं पिछले 6 महीनों में जिनसे मैं नहीं मिला उनको बुला लो. तो हम लोग करीब 40 लोग थे, हमको बुलाया गया और मिस्टर प्रेम जी ने 2 घंटे हम लोगों को ये गेव अ टॉक. और उसमें एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका काम क्या है, विप्रो को क्या करना है, विप्रो के वो क्या है. उन्होंने सिर्फ बोला कि मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे एथिक्स क्या है और मुझे वैल्यू सिस्टम मेरे क्या है, उतना बोला उन्होंने. और मैंने बहुत अच्छा लगा. और वो ऐसे करके हर लोग हर इंसान से मिलते थे, मतलब जो नए आते थे. और बाद में जब हमने उनके साथ काम किया तो देखा कि वो वाकई वही करते थे. जो गाड़ी हम लोगों के लिए कार आती थी, मारुति वैन, वो उनके लिए आती थी. जिस होटल में हम ठहरते थे जयपुर में या जहां पे जाते थे वहीं पे वो ठहरते थे. जिस क्लास में वो बैठते थे इकोनॉमी, हम भी. तो ही लेड बाय एग्जाम्पल. तो ये जो लीडर थी ये एग्जाम्पल से चले और उन्होंने ये सेट किया. तो ये लीडर्स हैं, वाइज लीडर आपने बोला, वो वही है जो कि लीडरशिप से काम करेगा. आखिर में यही बोलूंगा कि कल से हम सुन रहे हैं कि जो आपका बॉडी रूप है और जो ये है वो आप नहीं है, आपका तो सोल है. और सोल कहीं ना कहीं जाके जब हम छोड़ेंगे शरीर तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो सोल जब जाएंगे तब तो उसका है उसके लिए तैयारी करिए, लेकिन जो आज आपका सोल है उसका क्या कर रहे हैं, आज प्रेजेंट में है कि नहीं है और उस प्रेजेंट में क्या हो रहा है। हमारे पास एक ही जिंदगी है, वो आगे वाली जिंदगी जो बार बार आएगी वो अलग है, लेकिन जो आज की जिंदगी है उसके लिए क्या कर रहे हैं। आर यू मेकिंग एन इम्पैक्ट, लोगों पर प्रभाव क्या कर पा रहे हैं आज, अगर आपने सीखा है करा है तो उसके लिए क्या किया। हम लोगों का आज वो एक और सेशन है इसके बाद, और आप भी बोलने वाले हैं डिटॉक्सिफाई के ऊपर। इतनी चीजें आ गई और फिर भी मैंने इतने टूल्स आ गए, इतना कुछ सुविधाएं आ गई, पहले नहीं होती थी, उसके बावजूद भी हमें 12-12 घंटे काम करते हैं और इस चक्कर में, और ये जो एक रेस सी है कि हमको पीछा ना रह जाए आगे बढ़ते रहें, कई चीजें हम लाइफ की इग्नोर कर जाते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो। और जैसे हम अब इस उम्र पे आए हैं तो हमको लग रहा है कि अरे ये नहीं कर देते, और मैंने यही देखा कि अगर हम जो कई चीजें हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल थी जिसकी वजह से हमने फैमिली को इग्नोर किया या दोस्तों को इग्नोर किया या पेरेंट्स को इग्नोर किया, वो दे वर नॉट वर्थ इट। तो उसके लिए कैसे बैलेंस करें लाइफ को, और वो मेरे ख्याल से एक टॉपिक आगे भी रहेगा कि इसको क्या है। एक चीज जरूर होनी चाहिए कि जब आप आगे जिंदगी में बढ़ें किसी भी स्टेज पे कोई रिग्रेट नहीं हो कि देखो हम ये करते हैं और ये हो जाता है। अभी भी टाइम है, और आप लोग तो जो यहाँ ऑडियंस में हैं, यू हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ यू, तो प्लीज रिफ्लेक्ट कि ये चीजें हैं और इसको हम इसी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस करें, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ के जाएं, वो एक बहुत जरूरी चीज है। और आखिरी तो मैं यही बोलूंगा कि इतने वर्ड्स रोज आते हैं, अखबार भरे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी जी उसके बारे में बात कर, जिसको बोलो वही बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और लोग घबराते हैं, कह रहे हैं हो क्या रहा है, हम तो बहुत पीछे रह गए। और तो ये चेंजेस ऐसे पहले भी आए थे, बहुत आए थे और आते रहेंगे, सिर्फ फर्क यह है कि जो पहले चेंजेस आते थे उसमें हमको थोड़ा समय मिलता था अडॉप्ट करने के लिए, इस समय पेस चेंज हो गई है। लेकिन ये भी जो टेलीफोन आया था उसको 1 बिलियन लोगों तक पहुंचने में 100 साल लगे थे, टीवी आया था तो 50 साल लगे थे, मोबाइल फोन आया था तो 15 साल लगे थे, व्हाट्सएप में 2 साल में, और अब पता नहीं कौन सी चीज महीनों में हो जाती है बिलियन। तो वो एडेप्शन रेट चेंज हो गया है, और जो हमारा माइंड है वो इट इज गुड इनफ एंड स्ट्रांग इनफ टू अडॉप्ट टू दिस चेंजेस। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बट डोंट रिज्यूम कि कोई और आके, जो आप लोग आईटी वाले हैं, कोई और आपके सिखाएगा। प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड इंश्योर दैट यू आर मूविंग विद द टेक्नोलॉजी एज फास्ट एज द टेक्नोलॉजी इज मूविंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
Sir, I don't know where you humbly said that I'm not so sure if I'll be able to speak on spirituality, but you seamlessly covered IT industry, leadership, values, integrity, health, all aspects including spirituality. So there is a lot of depth and understanding and wisdom from the wise leader over decades of experience, so it was so easy for him to express all his thoughts. So thank you again very much. We will have the pleasure of listening to Mr. Somit again in a panel discussion in some time. So look forward to that.